हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप सब लोग संध्या जागृति के आज के 24 जून के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अगर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो बोलने वाले का क्या काम है ना? बोलने वाले का जो बोलना है उसको कीमत तब प्राप्त होती है जब सुनने वाले होते हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद है। तो अभी सब लोगों का परम भाग्य से अभी श्री जगन्नाथ भगवान की उनकी रथ यात्रा होने वाली है और रथ यात्रा दुनिया में सब जगह होती है। अभी अभी मैं उडुपी से आ रहा हूँ, उडुपी कर्नाटक में आता है, फिर मैं मुल्की भी गया था वहाँ से और फिर मैं उडुपी के कई मंदिर में भी गया, तो हर मंदिर में शाम को रथ यात्रा होती है हर रोज, और किसी दिन सोने के रथ में रथ यात्रा होती है, सोने का पूरा रथ, किसी दिन चांदी के रथ में रथ यात्रा होती है, किसी दिन ब्रह्म रथ में रथ यात्रा होती है, किस दिन सोने की पालकी में जुलूस निकालते हैं, किस दिन चांदी के पालकी में जुलूस निकालते हैं। हर रोज हर मंदिर के प्रांगण में भगवान अंदर बैठकर तंग आ जाते हैं, फिर बाहर आके विहार करते हैं। सब भक्त लोग हाथ में मशाल लेके, हाँ, दीपक लेके, मोर पंख लेके, चमर लेके, फूलों की माला लेके, वाद्य लेकर गीत गाते हुए भगवान को एक सैर कराते हैं रोज। तो रथ यात्रा जो है ये हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और रथ यात्रा में किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता है, सब गांव के लोग रथ यात्रा में अपने आप आ जाते हैं। संस्कृति कैसी है गांव की, सुबह जब उठते हैं तो मंदिर जाते हैं, मंगला अटेंड करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का जप करते हैं और फिर घर जाके कपड़ा पहन के काम पे जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। जैसे ही काम से घर आते हैं, हाथ पांव धोते हैं, स्नान करते हैं और सीधे मंदिर में आ जाते हैं, संध्या आरती अटेंड करते हैं और संध्या आरती होने के बाद में रथ यात्रा में भाग लेते हैं। और रथ यात्रा के समय किसी को बोलना नहीं पड़ता है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, अपने आप आकर सब सेवाएँ जो हैं वो संभाल लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, भगवान की सेवा में रहना, हमेशा भगवान के विचार में रहना और भगवान की सेवा में रहना, ये हमारी मूल संस्कृति है जिसको हम भूल चुके हैं आज, इसको जागृत करना है। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा होती है तो 10 लाख लोग आते हैं, एक भी कार्ड नहीं छपता है, आपको निमंत्रण है रथ यात्रा में आइए, ऐसा कोई कार्ड नहीं छपता है वहाँ पर, बिना निमंत्रण के एक ही दिन में एक ही जगह पर 10 लाख इकट्ठा होते हैं, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा उत्सव या कोई घटना या कोई समारोह ऐसा नहीं है इसमें एक दिन में बिना बुलाए 10 लाख कई घंटों के लिए एकत्र होते हैं। और कुंभ मेला ऐसा एक उत्सव है जो एक महीने का होता है जिसमें भी किसी को बुलाया जाता नहीं है, उसमें 3 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं। इसको कहते हैं भगवत भावना, अरे आओ रे, आओ आओ, आप भी आ जाओ, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब लोग अपने आप आ जाते हैं। तो ये जो मैंने रथ यात्रा का वर्णन किया हमारे गांव में, सब गांव-गांव में मंदिर मंदिर में होता है, इसमें और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में क्या अंतर है बताइए? यस, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, आप लोग भूल गए, क्या अंतर है बताइए? इसका अंतर एक ही है कि हर मंदिर में जब रथ यात्रा होती है, पालकी यात्रा होती है, तो उत्सव मूर्ति बाहर निकलती है, मूल मूर्ति वहीं रहती है। लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में क्या होता है, मूल मूर्ति बाहर निकलती है, जो साल भर मंदिर में रहती है वही बाहर निकल कर रथ यात्रा में सवार हो जाती है। ये विशेषता है। बाकी सब जगह पर उत्सव मूर्ति को लेके जाते हैं, उत्सव मूर्ति के द्वारा मिरणोक जुलूस यात्रा ये सब संपन्न होता है। तो ये जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत रीति है। और क्या विशेषता बताया मैंने लास्ट टाइम आपको, आप लोगों को बोलना है अभी, और क्या बताया था मैं, किसी मंदिर में आपको अगर लगता है कि भगवान के पैर को छूना चाहिए तो आपको वहाँ पर पैर छूने का चांस मिलता है क्या? पंडरपुर में मिलता है एक ही जगह पर, लेकिन और कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ रथ पे चढ़ते हैं तो उस दिन सबको पैर छूने को नहीं, गले मिलते हैं सब लोग उनको, सब लोग आलिंगन देते हैं, गले मिलते हैं प्रेम से, सुभद्रा जी से, जगन्नाथ से, बलदेव से। इतना बड़ा उत्सव जो है ये कहीं नहीं होता है। इसलिए आप सब लोगों को कर्जा निकाल के, भिक्षा मांग के, कुछ भी करके जीवन में एक बार, जैसे मुसलमान लोग हज की यात्रा करते हैं पैसा इकट्ठा करके, इसे एक बार आपको जीवन में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अटेंड करना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जाता है जो व्यक्ति, वो दोबारा इस विश्व में जन्म नहीं लेता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी रथ यात्रा हॉस्पिटल में 2 जुलाई को है ना, 2 जुलाई को लिखा है ना, बोर्ड लगाया है, उसके पहले मंदिर की रथ यात्रा होगी अगले संडे को। हाँ, आप लोग घर में मत बैठना उस समय, सब लोग रोड पे आ जाना, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा का बहुत सारा वरदान है हमारे लिए। वो कैसा है, रथ में बैठे हुए जगन्नाथ भगवान को जो प्रेम से देखता है, भक्ति भाव से देखता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, इस दुनिया में कष्ट भोगने के लिए दोबारा नहीं आता। जो रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, जो नीचे झुककर प्रणाम करता है रोड पर, वो व्यक्ति भी कष्ट भोगने के लिए दोबारा नहीं आता है, उसका जन्म नहीं होता है। आप लोग दीवार को टेक के मत बैठो, आगे बैठो, हाँ आगे आ जाओ। क्या बताया मैंने आपको, आप दोहराइए। पहला क्या बताया, भगवान की रथ यात्रा अटेंड करने से दोबारा जन्म नहीं होता है। बाद में क्या बताया, रथ यात्रा में बैठे हुए भगवान का जो दर्शन करता है, हाँ प्रभु जी भूलना नहीं है इसको, बाय हार्ट करना है आपको, ये सब लोगों को बाय हार्ट करना है। ये भूल जाएंगे तो कैसे आपका बेड़ा पार होगा बताइए। जो रथ में बैठे हुए भगवान को देख रहे हैं, जो उनको देख के हाथ जोड़ रहे हैं, जो उनको देख के जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं, ये व्यक्ति इस भवसागर में दोबारा नहीं आएगा। और 2 और बचते हैं, रथ यात्रा जिस रस्सी से खींची जाती है उसको जो स्पर्श करता है वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है, और उसको पकड़ के जो रथ खींचता है वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है, भवसागर से मुक्ति पाता है। और ये 5ों करेगा, उसमें से 1 करेगा, उसमें 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5ों करेगा, वो व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। कितना बड़ा वरदान दिया सोचो आप। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भगवान रथ में बैठकर निकलते हैं जगन्नाथ जी, उनका क्या भाव है, उनका भाव यह है कि मैं द्वारका से, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहा हूँ, जहाँ से मैं 10 साल की उम्र में छोड़ के चला गया था राजपाट करने के लिए, कंस को मारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए मैं वृंदावन छोड़ के चला गया था, वो दोबारा जा रहा हूँ मैं। मेरे जैसे लड़की अपने जाती ना मायके, वैसे भगवान भी अपने मायके जा रहे हैं, इस भाव में बैठते रथ यात्रा में। वो सारथी को क्या बोलते हैं, चलो वृंदावन ले चलो, तो वृंदावन अभी निकले नहीं हैं, गए भी नहीं हैं, लेकिन वृंदावन जाना है इस भाव से बड़े आनंद में मग्न हो जाते हैं। और उस आनंद में जो भी जो व्यक्ति उसको देखकर जो मांगता है उसको पूरा कर देता है। इसलिए अगर आपको सही स्वार्थ आपके अंदर है, तो आपको भगवान के साथ दर्शन करते हुए उनसे वरदान मांगना चाहिए। और वरदान मांगने जैसे ही एक ही वस्तु होती है जीवन में जो आपके साथ जा सकती है। बाकी ऐसे वरदान आप मांगते हो उस वस्तुओं का, जो सारी वस्तुएं यही छोड़कर आपको जाना होता है। आप बोलेंगे बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, बड़ा पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ऐसा सब बोलेंगे ना, तो मृत्यु के समय ये सारा चीज़ हमको यहीं छोड़ के जाना होता है। इसलिए वरदान क्या मांगना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए हम क्या मांगते हैं, हमें प्रेम और भक्ति चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। वो जो प्राप्त करता है उसको वो छोड़ के जाना नहीं पड़ता है, जहाँ जाएगा वहाँ उसको सेवा प्राप्त होगी, आत्मा जहाँ पहुँचेगी वहाँ पर उसको सेवा मिलती रहेगी। इसलिए भगवान से कभी भी दुनियादारी की चीज़ें मांगना नहीं चाहिए, ये मूर्खता की बातें। राजा के पास जाएगा, राजा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे दो रोटी खिला दो, वो मूर्ख व्यक्ति है। हाँ भूख लग रही है आपको, राजा कहता है मैं आपके जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ, दोबारा भूखा नहीं होंगे आप कभी, इतना खाना खिला सकता हूँ आपको, वो क्या मांग रहे हैं, दो रोटी दो बोल रहे हैं। राजा के पास जाके जीवन भर का रोटी का इंतजाम का मांग करना चाहिए। इसी तरह से जगन्नाथ भगवान के पास जाकर बोलेंगे मुझे दुनिया की ये खिलौना दो वो खिलौना दो, इसको मुझे छोड़ के जाना होगा, तो क्या मूर्ख, क्या उसमें बुद्धिमत्ता है? क्योंकि भगवान जैसे होते हैं, राजा का जन्मदिन है समझो, राजा का बर्थडे है, तो राजा उस दिन खुशी से जो मिलता है उसको दान देता है, गले की माला निकाल के देता है, हाथ के अंगूठे निकाल के देता है, लो, क्योंकि उस दिन बड़ा खुश होता है वो। ऐसे भगवान भी अपने जन्मदिन पे बड़े खुश होते हैं, इसलिए सबसे अधिक कृपा जो है भगवान की उनके जन्मदिन पे प्राप्त होती है। गोकुलाष्टमी है, राधाष्टमी है, जगन्नाथ की स्नान यात्रा है, रथ यात्रा है, हाँ बलराम जी का जन्मदिन है, रामनवमी है, सीता नवमी है, ये सब दिन सबसे अधिक कृपा प्राप्त होती है उनकी। तो इसलिए हम लोग सब लोग रस्ते पे उतरते हैं, घर पे नहीं बैठते हैं, अपने खिड़की से और गैलरी से रथ यात्रा को देखना नहीं चाहिए। जो भगवान खुद मंदिर छोड़ के रस्ते पर आपको देखने को आ रहे हैं और आप अपने घर में बैठ के उसको देख रहे हैं, अच्छा लगता है क्या आपको? हाँ, जगत के स्वामी जगन्नाथ है, वो ब्रह्मा जैसे उनके सेवक हैं सब लोग, बड़े बड़े लोग, वो आप लोग मंदिर में नहीं आते उनके, इसलिए आपको देखने के लिए मंदिर छोड़ के आपके दरवाजे पे आते हैं रथ में बैठकर। भक्त लोग बड़े प्रेम से खींच के लेके आते हैं उनको, ये उनका भाव है। भगवान का भाव ये है, आप समझो उस भाव को। भगवान लकड़ी नहीं है, भगवान व्यक्ति है, भगवान पिता है हमारे, प्रेम करते हम पर, वो इतने दयालु हैं ये भगवान कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में वो पंडा लोगों का नियम है कि वहाँ पर किसी फिरंगी को प्रवेश नहीं है, केवल हिंदू आदमी होना चाहिए बस, बाकी किसी भी धर्म के लोगों को वहाँ पर प्रवेश नहीं है। इसलिए देश विदेश के जितने भक्त बने हुए हैं वो साल भर तरसते हैं, ये तमन्ना करते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, हम तो विदेशी हैं, हमारा चमड़ी गोरा है, हम क्रिश्चियन हैं, हम रशिया के हैं, हम इधर के हैं, उधर के हैं, पुर्तगाल के हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो कमाल कर दिया ना, प्रभुपाद जी ने सब देश के सब लोगों को भक्त बना दिया। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको बोलने वाला भक्त नहीं बना हरे कृष्ण में, सब देश के सब जाति के सब भाषा बोलने वाले हरे कृष्ण के अंदर है, काले हैं, गोले हैं, पीले हैं, सब रंग के लोग हैं, लेकिन सबको दुर्भाग्य से उधर प्रवेश नहीं है साल भर में। हम जाते हैं, हमको भी पूछते हैं हमारा गोत्र क्या है, तो हम बोलते हैं तुरंत भारद्वाज गोत्र है, हाँ जो हमारा गोत्र तुरंत बोल देते हैं, लेकिन विदेशियों का गोत्र कहाँ होता है, इतने भाग्यशाली नहीं है वो। तो ऐसे भक्तों का दिल भी वो जानते हैं कि इनका दुर्भाग्य से शरीर जन्म हुआ है उधर, भाषा विदेशी बोलते हैं, लेकिन भक्ति मुझ पर करते हैं, मुझ पर प्रेम करते हैं, इसलिए वो साल में बाहर निकल जाते हैं रथ यात्रा के बहाने। आओ सब लोग मिलो, मुसलमान मिलो, क्रिश्चियन मिलो, हिंदू मिलो, बुद्ध मिलो, जिसको मिलना है, यवन म्लेच्छ परदेशी देसी जिसको मिलना है मिलो, सबको अपने रथ पे लेते हैं और गले मिलते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं दुनिया में, ऐसा कोई रूप नहीं है, सबसे दयालु भगवान है ये। न केवल स्वयं मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं, लेकिन सबको बिना भेदभाव के, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा काला गोरा विदेशी देशी किसको देखते नहीं, सबको दर्शन देते हैं। पंडा लोग भी सबको बुला बुला कर उनको गले मिलाते हैं, वही पंडा लोग रोकते हैं उनको हर साल के हर दिन, लेकिन उस दिन वही पंडा लोग उनको बुलाते हैं, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी का जो भाव है वही उनके पंडा भी स्वीकार करते हैं। उस दिन जगन्नाथ जी बड़े दयालु करुणामयी भाव में रहते हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सातवें माले के गैलरी में आके वहां से देखते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इसको दुर्भाग्य कहते हैं, इसको भाग्य नहीं कहते। तो भगवान स्वयं तुम्हें देखने के लिए दर्शन जमीन जमीन पे उतर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, तो हमें क्या कष्ट है रोड पे उतरने के लिए। वो कृपा देने के लिए आए हैं, हमको लेने में भी कंजूसी कर रहे हैं हम लोग, वो कृपा लुटा रहे हैं आपके ऊपर। और हम लोग को इतना शक्ति नहीं कि हम लोग टीवी बंद करके नीचे आ जाए, तो टीवी में कुछ सीरियल चल रहा है ना, वो उसको बंद कैसे करेंगे, वो फिर सास बहू थी, बहू सास थी, उसका क्या होगा फिर आगे। इसलिए अंदर अटके हुए हैं। अरे विंबलडन की मैच चल रही है, क्रिकेट की मैच चल रही है, फुटबॉल की मैच चल रही है, ऐसे हजार मैचें होती रहती है और चलते, कोई याद नहीं रखता है कौन जीता कौन हारा, लेकिन जगन्नाथ को सब याद रखते हैं। और अगर आपको फुटबॉल की मैच और क्रिकेट की मैच याद भी रही और मरते हुए उसकी याद आई, तो फिर दोबारा क्रिकेट के मैच की जगह पर जन्म लेंगे आप। लेकिन अगर आपको मरते हुए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा याद आई ना, तो आप भगवान के धाम चले जाएंगे। और जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने वरदान दिया है कि जो कोई मेरी रथ यात्रा में आएगा उसको मरते वक्त वही रथ यात्रा नजर आएगी, उसी की याद आएगी उसको, वो खुद याद नहीं करेगा, मैं याद कराऊंगा उसको। कितनी कृपा है, देखो मैं शायद सोचूंगा मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, ऐसे मेरी चिंता में मन में विचार रहेगा मेरे। लेकिन उस चिंता के भीड़ के अंदर जगन्नाथ जी तुम्हें उनकी याद दिलाएंगे, क्योंकि तुमने उनकी रथ यात्रा में रस्ते पर उतर कर उनको प्रणाम किया था। ऐसे दयालु भगवान है वो। आप करते करते हो इतना सा, उसका इतना बड़ा फल देते हैं वो। क्या फल है वो? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत धाम में प्रवेश, दोबारा कष्ट नहीं, दोबारा कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट तकलीफ नहीं, ऐसा जीवन आपको भगवान देंगे एक बार रास्ते पर उतरने से। आप सोचो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं उतर सकते हम। अगर आप नहीं उतर सकते तो आपको कुर्सी में बिठा कर उतरा सकते हैं। लेकिन दर्शन करना चाहिए भगवान का, रथारूढ़ रथ में आरूढ़ भगवान का दर्शन करना बड़े भाग्य की बात है। और वो सबको देखते हैं, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, उनकी नजर से कोई चुकता नहीं है। आप शायद कुछ झाड़ के बीच में आएगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उनकी नजर जो है सब पर बराबर रहती है। जो कोई आया हुआ है, जिसने कोई सेवा किया है, जो देख रहा है, उनको देख देख के तरस रहा है, हाथ हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना कर रहा है, बार बार मुड़ के हाथ जोड़ रहा है, उनको बराबर देखते रहते हो। क्या मांग रहा है? प्रेम मांग रहा है, भक्ति मांग रहा है, सेवा मांग रहा है, उसको कभी भूलते नहीं वो। इतने दयालु भगवान है हमारे। और भक्तों का कैसा भाव रहता है देखो, भक्त भी कुछ कम नहीं रहते हैं। भगवान जितने दयालु, भक्त उससे भी अधिक प्रेम करने वाले। हाँ, भक्त सोचते हैं कि अरे अभी जगन्नाथ जी आएंगे, अपनी दुनिया को देखने को आएंगे, कैसे मेरे लोग रहते हैं, कैसे हैं वो, उन पर कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आएंगे, सबको नजरों से अपने बरसाव करेंगे कृपा का, तो जहाँ जहाँ देखेंगे उनको सच साफ दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो भक्त लोग जाते हैं, 28 तारीख को जाएंगे और सब जगह झाड़ू लगाकर सब साफ कर देंगे, कोई कचरा, कोई प्लास्टिक, कोई फ्रूटी का पॉकेट, किसी का थैली, सब निकाल देते हैं गटर से, इधर से हाथ डाल के। क्या भाव रहता है उनका? समाज सेवा का भाव रहता नहीं? समाज सेवा तो हो ही रही है, साफ सफाई तो कर ही रहे, लेकिन क्या भाव है कि ये रास्ता मैं क्यों साफ कर रहा हूँ? क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ पर नजर डालेंगे तो उनको गंदा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अगर हमारे घर में शादी है तो हम कोना कोना साफ करके चकाचक कर देते हैं, कोई दूल्हा दूल्हे का पिताजी आके देखेगा अरे, तो उसको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए पर्दा बदल देते हैं, रंग मार देते हैं घर पे, नया फ्लावर पॉट लाते हैं, उसमें फूल लाते हैं, नया चादर लेके आते हैं, नया टेबल क्लॉथ लेके आते हैं, नया फूल लगाते हैं, सब कुछ नया कर देते हैं, नया फ्रेम लगा देते हैं, नया लाइट लगा देते हैं, फिर तोरण लगा देते हैं, फिर क्या वो लाइट लगा देते हैं उसके ऊपर चमकने वाली, ताकि जो मेहमान आएंगे शादी वाले बाराती, उनको किसी भी कोने पर देखने पर अच्छा लगना चाहिए। बाथरूम के अंदर भी कुछ रखते हैं, फ्लावर पॉट और एक सेंट का बॉटल रखते हैं, उसका खुशबू आते रहते हैं, बाथरूम में गए तो भी उसको अच्छा लगना चाहिए। इतनी खातिर हम लोग अपनी दुनियादारी की मेहमानों के करते हैं, वो तो भगवान है, सोचते हैं, भक्त लोग क्या सोचते हैं, उसकी नज़र जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पर साफ होना चाहिए। सब भक्त लोग जो है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, सब मिलकर झाड़ू लेकर हाँ साफ कर देते हैं। इसी भाव से हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी वो जगह साफ किया था जहाँ पर वो 7 दिन रहने वाले हैं। उसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर। ये गुंडीचा नाम कैसे पड़ा? राजा इंद्रदुम्न था जिसने जगन्नाथ को प्रकट किया, उसकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। तो राजा ने अपनी पत्नी के नाम से बड़ा महल बनाया था, गुंडीचा महल। और गुंडीचा रानी का भगवान जगन्नाथ पर बड़ा प्रेम था, और गुंडीचा रानी का ऐसा भाव था कि उसका घर जो था वो वृंदावन के भाव से बनाया था उसने। तो जगन्नाथ जी अपना मंदिर जो है जहाँ रहते साल भर, वो छोड़कर उस मंदिर में जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में, और 9 दिन वहाँ रहते हैं। और वहाँ के लोग वृंदावन के भाव से उनकी सेवा करते हैं, ब्रज भाव से, गोपियों के भाव से। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस भाव की सेवा जो है वो गुंडीचा महल में होती है। तो भगवान कल गुंडीचा महल में आने वाले हैं। इस भाव से चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को मिलकर वहाँ ले जाते हैं और सब जगह इतनी बढ़िया साफ करते हैं। एक बार साफ करते हैं, दोबारा साफ करते हैं, तीसरी बार साफ करते हैं, और सब लोग मुख से हरी हरी कृष्ण कृष्ण ये भी बोलते रहते हैं। पहले झाड़ू से साफ करते हैं, फिर कपड़ा से साफ करते हैं, फिर पानी से साफ करते हैं, फिर वापस कपड़े से साफ करते हैं। और हर बार सबसे अधिक कचरा चैतन्य महाप्रभु इकट्ठा करते हैं। सब लोगों ने इकट्ठा हुआ कचरा जो है वो एक तरफ, और महाप्रभु जी अकेले ने इकट्ठा किया हुआ कचरा दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा। और वो क्या बोल रहे हैं? हम मंदिर नहीं साफ कर रहे हैं, हृदय को साफ कर रहे हैं। मुख से हरी हरी बोल रहे हैं और भगवान का घर साफ कर रहे हैं। ये करते समय हृदय भी साफ हो रहा है, हृदय में जितनी गंदगी है वो सब साफ हो रही है, मन पवित्र हो रहा है। मतलब बाहर से मंदिर की जमीन और मंदिर का तख्त साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हृदय को साफ कर रहे हैं ताकि भगवान हृदय में प्रवेश करें। और हृदय की रथ यात्रा है, हाँ, और रथ यात्रा हृदय में ही हुई थी। गोपियों ने उनको कुरुक्षेत्र में देखा था, तो वो दूर थे, बड़े राज वेश में थे, बड़े हजारों सैनिक थे उनके पास, बई रानियां खड़ी थी सज सज के, राज वस्त्र पहन के, स्वयं भगवान खड़े थे। और ये गांव की गवार औरतें दूर खड़ी थी पेड़ के पीछे, उनको बहुत संकोच हो रहा था, इतनी बड़ी सेना के अंदर में हमारे प्रियतम भगवान को कैसे मिलेंगे, कौन खड़ा करेगा हमको। तो हिम्मत नहीं हुई भीड़ में जाने की, और भगवान भी बड़े दूर रथ में थे, तो मन से ही बात करने लगे, अरे भगवान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम वृंदावन जाएंगे, दोबारा गाय चराएंगे, आप बंसी चराना, हम गीत गाएंगे, हम भोजन खिलाएंगे, गाय का मक्खन खिलाएंगे आपको, आप यहाँ पर क्या राजवस्त्र पहन के घूम रहे हो, ये सब उतारो, हाँ नंगे पैर चलो वृंदावन धाम, फिर वही रास रचाएंगे, फिर वही आनंद लेंगे। कि मन में ही चल रहा है सब कुछ, मुख से आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। फिर जिस रथ पर भगवान खड़े हैं अपना अपना काम करने के लिए, उस रथ को मन ही मन में डोरी लगा देते हैं, और मन के अंदर ही उस डोरी को खींचते हैं, बोले चलो यहाँ से आप निकलो, अभी वृंदावन जाएंगे, और मन ही मन में उस रथ को वृंदावन लेके जाते हैं। इसलिए हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं। जो भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े हैं उनको वृंदावन तक खींच के गोपियाँ भाव से खींच रही हैं, मन से खींच रही हैं, प्रेम से खींच रही हैं, और भगवान भी उसी मन में उनके रथ में बैठकर वृंदावन चले जाते हैं। उनका शरीर और उनका रथ वही है, लेकिन मन से वो भावना से वहाँ पहुँच जाते हैं। ये भाव है गोपियों का, रथ यात्रा के पीछे भी यही भाव है। हम लोगों को भी जब हम रथ खींचते हैं तो भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर खींचने के भाव से रथ खींचना चाहिए, कि चलो भगवान जैसे आपको गोपियों ने खींचा था वैसे भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको खींचने का। और जब साफ सफाई कर रहे हैं तो यही सोच रहे हैं कि कल हमारा हृदय भी साफ होगा, गुंडीचा मंदिर के साथ में हृदय भी साफ होगा तो शायद हमारे हृदय में भी प्रवेश करेंगे। अगर भगवान को हृदय में बुलाना है तो हृदय को साफ करना होगा ना, उसमें क्रोध है, उसमें लोभ है, उसमें वासना है, उसमें द्वेष है, उसमें झगड़ा है, उसमें कश्मकश है, चिंता है, टेंशन है, उसमें इसके बारे में गुस्सा है, उसके बारे में प्रेम है, इसके बारे में लाग है, कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ऐसे गंदगी में कैसे आएंगे भगवान? तो वो जब मंदिर साफ करेंगे प्रेम से तो हृदय भी साफ होगा, तो आने की उम्मीद है, चांस है, आ सकते हैं, है ना? तो उसी भाव से हम लोग हॉस्पिटलों को साफ करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मंदिर है भगवान का, इसको टेम्पल ऑफ हीलिंग कहते हैं। यहाँ लोगों का दर्द निवारण होता है, यहाँ लोगों को भक्ति को पुष्टि मिलती है, दर्द निवारण और बीमारी का बहाना करके आते हैं, भगवान से उनका परिचय होता है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान के नाम की ध्वनि सुनते हैं, भगवान का कीर्तन सुनाई पड़ता है, भगवान का रथ में दर्शन होता है। हाँ, अगर जगन्नाथपुरी कुछ स्पेशल है तो हमारा हॉस्पिटल भी स्पेशल है, तो जगन्नाथपुरी में साल में एक बार रथ यात्रा होती है, हमारे हॉस्पिटल में हर रोज रथ यात्रा होती है, एवरी डे। अपना मंदिर छोड़ के भगवान रथ में बैठकर सब मरीज के बिस्तर के पास में आता है, उसको पता भी नहीं है कि भगवान कौन है, फिर भी वो उनके बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल की विशेषता है, तो इसको आप हॉस्पिटल कैसे बोल सकते हो, ये तो मंदिर है भगवान का। जो मंदिर में नियम पालन होता है वो सब यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी लहसुन प्याज नहीं आता है, यहाँ पर भी भोग लगाए बिना भगवान को हम लोग भोजन नहीं करते हैं, ना मरीज को खिलाते हैं, ना हम खुद खाते हैं, हर एक वस्तु यहाँ पर भगवान को भोग लगाकर उनके प्रेम से अर्पण करने के बाद में प्रसाद के रूप में खाते हैं, आरती पूजा होती है, किसी हॉस्पिटल में होता है कैसे? और जब रथ घूमता है तो कार्तिक महीने में दीपक जलाते हैं उनके लिए फ्री में, और बाकी दिन फूल चढ़ाने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको मौका देते हैं भगवान। इसलिए मंदिर है, और साथ साथ में इस मंदिर में बीमार व्यक्तियों को दवा देके ठीक भी किया जाता है, जो मन से परेशान है उनको भगवान के विषय में ज्ञान भी देते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको भगवान का नाम का भेंट देते हैं, उनके जीवन का परिवर्तन करते हैं। शराबी आदमी शराब छोड़ देता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, मांस खाने वाला मांस छोड़ देता है, अपने जीवन को शुद्ध कर देता है इसी हॉस्पिटल में आने की वजह से। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो सब बुरे आदतें को छोड़कर भक्त बन जाते हैं, इसलिए मंदिर है ये। और बाकी मंदिर में हमारे हॉस्पिटल में फ़र्क क्या है? वो मंदिर में जब तुम्हारा अच्छा मूड होगा, आज झगड़ा बिगड़ा नहीं हुआ बीवी से, चलो मंदिर जाके आते हैं, खाना पीना हो गया है, नींद बींद पूरी हो गई है, पेपर पढ़ के हो गया है, तो मंदिर जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई प्लान नहीं होने पर भी आना पड़ता है, आपका कोई प्लान नहीं आने का, यहाँ पर काम पे निकले थे आप, घर से काम पे निकले थे, पेट में दर्द हुआ, जोर से यू टर्न, ड्राइवर यू टर्न मारो, भक्ति विधान में लेके जाओ, इच्छा नहीं आने की, लेकिन आना पड़ता है। तो यहाँ पर आने वालों की संख्या मंदिर में आने वालों से अधिक होती है, होती है कि ना? रोज 1500 लोग प्रवेश करते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, जितने 1500 लोग आते हैं सब प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं, तुलसी महारानी का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, फिर आते ही उनके कान पर भगवान के नाम का ध्वनि पड़ता है, हरे कृष्णा। फिर किसी से मिलने जाएंगे तो भी उनको हरे कृष्ण सुनाई पड़ता है, बड़े शाम को बार शाम के समय आ गए, भूख लग गई, कैंटीन में गए तो प्रसाद खाने मिलता है आपको, मतलब शीरा नहीं खाने को मिलता है, समोसा, बटाटा वड़ा, मेदू वड़ा, डोसा, जो भी मिलता है वो प्रसाद के रूप में मिलता है। अरे अचानक घूमते घूमते भगवान सामने आ जाते हैं, फिर उनको फूल अर्पण करने का मौका मिलता है, ये सब चमत्कार है। इसलिए गुंडीचा मार्जन जब जगन्नाथपुरी में होता है, जब हमारे मंदिरों में होता है, रस्ते पर यहाँ मीरा रोड में होता है, उसी दिन हम लोग अपना हॉस्पिटल भी साफ कर लेते हैं। इसमें कई भाव से हम कर सकते हैं, एक भाव ये है कि ये हमारा जो घर है खुद का, जहाँ बीवी और बच्चे रहते हैं, वो घर चलता है क्योंकि हमारा अस्पताल है, इसमें हम सेवा देते हैं, पगार मिलता है, तो हमारा घर चलता है, हमारे बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जैसा हम घर साफ करते हैं। हाँ, समझो आपके घर में एक बाई, आप लोग ही करते होंगे शायद, किसी किसी बाई होती है, जब वो नहीं आते तो हम लोग भी करते हैं ना साफ, वैसे नहीं बोलते मैं डायरेक्टर हूँ, मैं साफ कैसे करूँगा, वो कुछ नहीं, जब बाई नहीं आती है तो डायरेक्टर हो या डॉक्टर हो या MD हो, उसको बाथरूम साफ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो घर है तुम्हारा, उसमें क्या है, उसमें कुछ संकोच नहीं होता है। उसी तरह से रोज आप लोग तो साफ सफाई करते ही हो, लेकिन एक दिन साल में महासफाई करते हो, शोल पर चढ़कर पंखे का पोंछ देते हो, हाँ, डीप क्लीनिंग करते हो, और केवल हाउसकीपिंग के लोग नहीं, सब लोग उसमें आ जाते हैं, मैनेजर से लेके डायरेक्टर से लेके डॉक्टर, सब लोग अपना शर्ट ऊपर करके लग जाते हैं सब लोग। वो अनोखा दृश्य होता है। वो दृश्य को देखकर कई लोगों ने बहुत प्रेरणा लिया है। कुछ लोग बोलते हैं, जब एक बार अचानक आए थे तो उस दिन हमारे डायरेक्टर साहब शर्ट ऊपर करके साफ सफाई कर रहे हैं, बोला अभी ब्रिजी हैं, कहाँ है, देखो उधर देखो वो चढ़े हुए हैं ना, वो डायरेक्टर है हमारे। तो हो भी, अरे चलो हमको भी दो झाड़ू हाथ में, हम भी करेंगे कुछ। ऐसा है ये वातावरण। तो सब लोगों को हृदय से प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए अस्पताल को साफ करना चाहिए। जहाँ जहाँ तुम्हारा हाथ पहुँचा नहीं है साल भर में, वहाँ वहाँ हाथ पहुँच जाना चाहिए। कबड़ के ऊपर, फाइल के नीचे, ड्रॉवर के अंदर, टेबल को आगे करके टेबल के पीछे, हाँ ट्यूबलाइट के ऊपर, इस तरह से जहाँ जहाँ हम लोग आम तौर पे नहीं पहुँच पाते हैं, वो सब जगह पर सोच सोच के हम लोग प्लानिंग कर करके हाथ डालते हैं और साफ साफ कर देते हैं। ये ऐसा अभियान किसी भी कंपनी में, हॉस्पिटल में, दुकान में नहीं होता है, ये केवल मंदिर में होता है और भक्ति विधान तो हॉस्पिटल में होता है। तो इसको आप ऐसा मत सोचो कि क्या टाइम पास है, क्या बोझ है, क्या अभी ज़बरदस्ती हमारे को सब लोग को साफ करवाएंगे, ये ना सोचकर ये सोचो कि भगवान को खुश करने का कितना आसान तरीका है। सब लोग मिलकर हाथ बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। इस भाव से हमको ये जो गुंडीचा मार्जन 28 तारीख का है उसको करना है। दोपहर को 2 बजे आरंभ हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से, स्वयं अपने हाथ से सब लोगों को झाड़ू पकड़ाया था और साफ सफाई के औजार दिए थे। वो देने के बाद में सब लोगों को माला पहनाई थी और सबके माथे पे प्रेम से चंदन लगाया था। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जगन्नाथ जी का मंदिर साफ करने वाले, आप लोग महान लोग हो, भगवान के भक्त हो, इसलिए साफ करने के पहले उनका सत्कार किया और फिर उनसे हाथ से मंदिर साफ करवाया। ऐसा नहीं कि एंड में सब लोगों को साफ करके आए बाद में चंदन लगाया, नहीं, पहले ही उन वो जो काम करने वाले हैं उस काम की महानता को समझते हुए काम को करने के पहले ही उनको चंदन लगा दिया, माला पहनाया और अपने हाथ से जो साफ सफाई के औजार हैं, झाड़ू का पोछा, वो सब दे दिया। और फिर वहाँ ऐसा नहीं कि आगो के आप जाओ अभी आप करो मैं देख रहा हूँ, ऐसे नहीं, स्वयं लग गए वही झाड़ू और लेके पोछा लेकर। और सबसे अधिक कचरा इन्होंने इकट्ठा किया, सबसे अधिक जो मैल था वो उन्होंने जमा किया, सब भक्तों ने मिलकर जितना किया उससे भी अधिक महान कचरा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इकट्ठा किया। तो भगवान कैसे हैं, अपने उदाहरण से सिखाते हैं, स्वयं भक्त बनकर आते हैं और भक्तों के बीच में भगवान की सेवा कैसे की जाती है वो अपने उदाहरण से दिखा देते हैं। तो इतना महान उत्सव हुआ चैतन्य महाप्रभु के समय आज से 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में, तो वो उत्सव इतना महान था कि भगवान ने क्या क्या उसमें सिखाया लोगों को कि कैसे भगवान के मंदिर को साफ करके हृदय की स्वच्छता होती है। और फिर भगवान को उस दिन विराजमान किया। जब सेवा करते ना तो अनोखा आनंद प्राप्त होता है, और सेवा में भी जो नम्र होकर सेवा करता है ना उसको बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। नम्र होकर जो सेवा करता है दोबारा सेवा मांगेगा और सेवा करते रहेगा, क्योंकि नम्र होकर सेवा करने में उसको बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए ये मत समझना कि ये केवल हाउसकीपिंग लोगों का काम है। हाउसकीपिंग के लोग बेचारे साल भर काम करते रहते हैं साफ सफाई का, और अस्पताल को चकाचक रखते हैं, साफ रखते हैं, चमकता हुआ रखते हैं। लोग कहते हैं कि हम इस ज़मीन पर सो सकते हैं, कोई संकोच नहीं हमको, इतना साफ ज़मीन है। तो एक दिन उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए सब लोगों को जाना चाहिए और प्रेम से अपनी सुरक्षा को देखते हुए, जैसे खिड़की के बाहर करते समय वगैरह, बिजली के बोर्ड को हाथ लगाते समय, उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रेम से साफ सफाई करनी चाहिए। एक बार हमारे बरसाने के संत हैं रमेश बाबा जी महाराज, वो एक बार ऐसे ही भंगियों की कॉलोनी में गए थे और अभी सब लोग सोच रहे थे क्या प्रवचन देंगे भंगियों की कॉलोनी में, क्या बोलेंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग हो, भंगी जमात के हो, लोगों का कचरा उठाते हो, लोगों का गंदा उठाते हो और साफ रखते हो सब कुछ, आप समाज की माँ की तरह हो, आप समाज की माता हो। तुम लोग आश्चर्य हो गए, अरे वाह क्या हमको क्या कंपेयर किया माता के साथ में, कैसे। बोले माता क्या करती है, ब्राह्मण की माता हो या वैश्य की माता हो या किस जाति कोई भी हो, माता अगर माता है तो क्या करती है, बच्चे का टट्टी पेशाब निकालती ना, एक बार निकालती है क्या, दिन में कितनी बार निकालती है, कोई गिनती है क्या उसकी, कितनी बार निकाला उसकी गिनती है, हमारे लिए हमारी माता ने कितनी बार किया कोई गिनती है, रिकॉर्ड रखा है क्या उसका, कुछ रिपोर्ट रखा है क्या, एक साल में कितनी बार हुआ कितनी बार पेशाब किया, कितनी बार लंगोटी धोया, कितनी बार सुखाया, कितनी बार पहनाया, कितनी बार टट्टी पेशाब किया, जब जुलाब हुआ तो कितनी बार हुआ, गिनती नहीं उसकी कुछ। बालक स्वच्छ कब दिखाई पड़ता है, जब माता बार लगातार भंगी का काम करती है तभी बालक वो स्वच्छ दिखाई पड़ता है, उसके मुंह से बाल से कपड़े से इधर से उधर से बदबू नहीं आती है, तभी कभी नहीं आती है, जब बालक के लिए माता लगातार साफ सफाई का काम करती रहती है तब जाकर बालक जो है जब मेहमान आएगा तो चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम लोग टट्टी पेशाब करते रहेंगे, कचरा फेंकते रहेंगे, इधर का उधर गंदा इधर डालते रहेंगे और वो भंगी लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा, सब समाज में दुर्गंधी फैल जाएगी, सब गंदगी फैल जाएगी, जहाँ देखो वहाँ पर कचरा, दिखने भी अच्छा नहीं, नाक के लिए भी अच्छा नहीं, देखने के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन जो कि भंगी लोग समाज में रहते हैं इसलिए हमारा रास्ता, हमारा बरामदा, हमारा चौकी साफ दिखता है। इसलिए आप सब माताओं को, मतलब वो सब पुरुष भी थे उसके अंदर, लेकिन आप सब लोग माता के समान हैं, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे उन्होंने सबको प्रणाम किया। संतों की दृष्टि ऐसी होती है, वो संत लोग कभी किसी को भेद नहीं करते कि ये साफ सफाई करने वाले हैं और ये चमार है और ये कुमार है और ये ब्राह्मण है और ये कथा करने वाला है और ये अधिकारी है, हाँ ऐसा भेदभाव नहीं करते हो। वो केवल उसका सार जो है ना वो ढूंढ के निकालते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो सबका गौरव करते, किसी की निंदा नहीं करते। इसलिए भंगियों के समाज में जाकर भी उन्होंने उनका गौरव किया, ऐसा बेकार का गौरव नहीं किया, सच हृदय से किया। सच है कि नहीं ये बात, अगर वो नहीं आएंगे, छुट्टी पर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, सब जगह सड़ा हुआ बदबू आएगा। वो काम करते समाज जो है साफ रहता है अपना। आप लोग काम पे नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल में सब जगह पर वो कॉटन गॉज और निडल और सब जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा वातावरण निर्माण करते हो जिसको देखकर लोगों को लगता है यहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह साफ सुथरी है, इतना चकाचक कंस्टेंटली लोग साफ करते रहते हैं यहाँ पर, हर कुछ समय पर कहीं भी जाएंगे तो लोग साफ़ सफाई करते हुए नज़र आते हैं, तो जो बीमार आदमी आता है ना वो समझता है कि हाँ यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता इतनी है तो बीमारी दूर हो जाएगी हमारे यहाँ पर। आप लोग अपने काम करने से लोगों के मन में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टरों के लिए आप मौका दे रहे हो लोगों का विश्वास निर्माण करने का, डॉक्टर दवा देंगे लेकिन विश्वास आप लोग निर्माण कर रहे हो कि आपके यहाँ पर स्वच्छता है तो लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है सब लोगों का। जब आप लोग साफ करेंगे तभी हमारे नर्स लोग दवा दे सकते हैं, डॉक्टर लोग उनको चेकअप कर सकते हैं, हाँ बाकी सब लोग चेकअप सोनोग्राफी में इधर उधर कर सकते हैं। अगर सब जगह गंदा फैला हुआ है तो कहाँ चेकअप करेंगे, वो कहाँ से ब्लड लेने को जाएंगे, सब जगह इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, लोग बीमार होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक होने को आए थे लेकिन बीमार होकर चले गए, ऐसा हो जाएगा, जब गया था तो ठीक था, जब जाके वापस आया तो बीमार हो गया। ये स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रेम से लोग अपनी चीज़ को साफ रखते हो। तो स्वच्छता जो है ना ये एक अभियान है, हरे कृष्णा, एक दिन का काम नहीं है ये स्वच्छता। मतलब क्या, दो चीज़ें उसके अंदर, गंदगी निर्माण नहीं करना ये उसका पहला काम है, और निर्माण होने के बाद उसको निकाल देना ये दूसरा काम है। गंदगी साफ करने क्यों पड़ती है, क्योंकि गंदगी बनती है ना, इसलिए उसको साफ करना पड़ता है। इसलिए पहले गंदी आदतों को हमको छोड़ देना चाहिए, और फिर भी उसके बाद में जब कोई मैल बनता है तो उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन स्वच्छ रखना, कोई चीज़ को रखना है तो गंदगी डालने की जो आदत, यहाँ केला खाया फेंक दिया, बिस्कुट खाया फेंक दिया, ये किया फेंक दिया, तो वो जो हमारी आदतें लगी हुई हैं उसको पहले सुधारना चाहिए। तो ये जो गुंडीचा का अभियान है ये बहुत गहरा अभियान है, ऐसे ही लोगों को काम पे लगाने का अभियान नहीं है ये। ये अभियान लोगों को वो चीज़ सिखाना है कि हृदय को, मन को, बुद्धि को, शरीर को और हमारे वातावरण को कैसे शुद्ध रखना है, कैसे हमारे वातावरण को शुद्ध रखना है, कृष्ण भावना से पाप न करते हुए बिना पाप से हमारे वातावरण को शुद्ध करना है, ये अभियान है ये। केवल भारी रूप से अगर हम लोग पुताई करते रहेंगे, नया नया रंग हर महीने लगाते रहेंगे और अंदर वासना रखेंगे हृदय में, हम बुरी आदतों को पनाह रखेंगे तो अंदर गंदगी बाहर स्वच्छ ऐसा हो जाएगा। हमारा अभियान कैसा है, हम बाहर साफ रखेंगे और हृदय को मन को और बुद्धि को भी साफ करेंगे। वो तरीका क्या है बताइए, मन को बुद्धि को साफ करने का तरीका क्या है, कोई बोल सकता है? हाँ महामंत्र तो जोर से तो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जप करने से चित्त शुद्धि हो जाती है, आत्म शुद्धि हो जाती है, मन शुद्धि हो जाती है, बुद्धि शुद्धि हो जाती है। और जब इस शुद्ध बुद्धि से हम रहेंगे तो हमको बाजू में भी गंदगी अच्छी लगेगी नहीं, वो भी हम साफ करते रहेंगे उसको। इसलिए हम क्या चाहते हैं, केवल अस्पताल साफ ना हो, आपका हृदय आपका मन आपकी बुद्धि भी साफ हो, जहाँ पर भी आप जाएँ वहाँ पर भी शुद्धि का अनुभव हो, है ना। गुलाब अगर किसी भी मालिक के खेत का हो, जहाँ भी जाएगा अपनी खुशबू देगा, है ना। वो अगर वो इनके ही खेत का होगा तो ही वो खुशबू देगा, इनके खेत में होगा तो नहीं देगा, ऐसा है क्या? वो नहीं, मोगरे का फूल कहीं भी आएगा, सोनटक्के का फूल किधर भी आएगा, वो जहाँ भी लेके जाएंगे, यहाँ से इंग्लैंड लेके जाओ, वहाँ पर भी खुशबू देगा वो। उसी तरह से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो काम करेगा, जो भगवान के नाम का जप करेगा और यहाँ के भाव को स्वीकार करेगा, वो जहाँ पर भी जाएगा उसके होने से, उसके केवल होने से भी लोगों को पवित्रता का अनुभव होगा। इसलिए आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, आप लोग इस अस्पताल से जुड़े हुए हो, अनोखे कार्यों के अंदर आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। सब लोग एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे साथ गाइए, जगन्नाथ स्वामी, बोलिए जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी, भवतु मे, भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, भवतु मे। इसका अर्थ यह है कि हे जगन्नाथ स्वामी, हमेशा मेरे नजरों के सामने बने रहिए, नयन पथगामी, मैं जिस रास्ते की ओर देख रहा हूँ उस रास्ते में आप बने रहिए, आपका दर्शन होता रहे, हृदय के आंगन में आप हमेशा बसे रहें और अंदर की नज़र से हम आपको निहारते रहें। जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।